परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं तेरा, हर कदम हर राह रहबर तू बना, मुझे प्यार मिला है खुदा तेरा। शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं तेरा, हर कदम हर राह रहबर तू बना, मुझे प्यार मिला है खुदा तेरा। शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी अपने कार्यों को करते हुए परमेश्वर की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी आशीषों को हम तक पहुँचाते हैं। मेरी आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार पत्रों के द्वारा अपनी आशीषों को हम तक पहुँचाएं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर कुछ बातों से घृणा करता है, दुष्टता से और झूठ बोलने से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम झूठ ना बोलें और हम परमेश्वर के अनुशासन में रहकर उसके निकटता में रहकर उसकी महिमा करें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 14 से अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन करें। इस समय हमारे श्रोता भाई बहन जो अलग अलग जगहों पर रहकर आपके वचन को सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय और विचारों को और एकाग्रतापन को खोलें ताकि जब आपके वचन को हम सब अध्ययन करें, सुने और सीखें, तो आपका वचन हमें से प्रत्येक के जीवन से बोले और बातचीत करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सहायता करें, उन पर अपनी आशीष प्रदान करें। इस समय हम सबको इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, नीति वचन धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें परमेश्वर की बुद्धि की बातें छोटे छोटे वाक्यों में पाई जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये बातें बाइबल के नायकों के संदर्भ में उचित बैठती हैं। ये आपके और मेरे जानकारों के संबंध में भी प्रासंगिक हैं और आपके और मेरे संदर्भ में भी ये पाए जाते हैं। तो आइए हम नीति वचन 14 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। ध्यान दीजिए, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। धर्मशास्त्र में ऐसी अनेक स्त्रियां हैं, परंतु बुरी स्त्रियों ने विनाश ढाया है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 2 और 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जब अजयाह राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था जो ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। उसकी माता की सम्मति के कारण आहाब का वंश नाश हुआ था। यह नीति वचन वास्तव में सत्य है। आप इसे जीवन में प्रयोग करके देखें तो इसे आज भी सच पाएंगे। मैं अनेक स्त्रियों को जानता हूं जिनके पापों के कारण उनके परिवार नाश हुए हैं, आज भी नाश हो रहे हैं। नीति वचन 14 अध्याय उसके 2 पद में आगे लिखा है, जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को प्रकट करेगा। पहला यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय उसके 6 पद में प्रेरित यूहन्ना कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। हमारा जीवन यीशु की नाई परमेश्वर की पूर्ण आज्ञाओं के पालन का जीवन होना चाहिए। आपको स्मरण होगा कि सामुएल ने राजा शाऊल से स्पष्ट कहा था, 1 सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 22 पद में, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आपका धर्म दिखावा और झूठा है। नीति वचन 14 अध्याय के 3 पद में लिखा है, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। इससे मुझे दाऊद और गोलियत का स्मरण होता है। 1 सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय उसके 41 से 49 पद में हम इसे पाते हैं, जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। यह गोलियत का विवरण है। उसने पलिस्तियों का योद्धा होने का गर्व किया था। दाऊद को युद्ध करने आता देख उसने कहा, 1 सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय उसके 43 और 44 पद में, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। फिर पलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। अब दाऊद के उत्तर पर ध्यान दें। पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 45 पद में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इसराइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। नीति वचन 14 उसके 4 पद में लिखा है, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। यह एक अति रोचक नीति वचन है। धर्म शास्त्र में अनेक स्थानों पर बैल का उदाहरण दिया गया है। बैल बलि का पशु भी था जो मसीह के बलिदान का प्रतीक था। बैल उस युग में ट्रैक्टर का काम करता था। वे बैल द्वारा गाड़ी खिंचवाते थे और हल भी चलवाते थे। मेरे विचार में उसकी गंदगी का कारण था कि गौशाला को साफ करना पड़ता था, जो एक कठिन काम था। गौशाला तब भी साफ रह सकती थी जब बैल वहां ना हो, परंतु ऐसा करने से वे बैल की शक्ति के उपयोग से वंचित हो जाते। इसमें हमारे लिए महान आत्मिक शिक्षा है। हम कभी कभी कलीसिया की समस्याओं और विभाजनों के समाधान में बैल को बाहर निकाल देते हैं। कलीसिया में सदा ही दीमक के समान व्यस्त लोगों का एक गुट होता है जो बाइबल की शिक्षा का पक्ष लेने वालों को बाहर करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे गौशाला को साफ करना चाहते हैं, इस कारण वे बैल को बाहर कर देते हैं, और कुछ समय बाद उन्हें समझ में आता है कि बैल ही तो था जो हल चला रहा था, वे ही तो आर्थिक सहयोग दे रहे थे। जी हाँ, वे ही थे जो प्रचारकों को भेजते हैं, अर्थात वे भेजते थे, वे ही थे जो खर्चा उठा रहे थे। अतः यदि कोई सफाई का काम करना चाहे तो पहले देख ले कि प्रभु के काम में बैल कौन कौन है। यह अधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरा एक विश्वासी मित्र एवं सह खिलाड़ी भी है। वह हमारे बाइबल शिक्षण कार्यक्रम में योगदान देता है क्योंकि वह बाइबल की शिक्षा में विश्वास करता है। हम अनेक विषयों पर परस्पर मतभेद भी रखते हैं। फुटबॉल खेलते समय मैं खेल पर ध्यान देता हूं और वह सदैव मेरे काम के बारे में पूछता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते, या आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। मैं उससे खिन होकर छुटकारा पाना चाहता हूं या पा सकता हूं, क्योंकि यहां गौशाला साफ करने का विषय है, परंतु मैं ऐसा करके बैल को बाहर कर दूंगा। मैं एक मित्र को भी खो दूंगा जो अनेक बातों में सर्वथा सही कहता है। वह परमेश्वर के वचन के प्रसारण में मेरे साथ जुआ भी खींचता है। बैल को बाहर करके गौशाला को स्वच्छ रखना कैसी मूर्खता है। नीति वचन 14 अध्याय के 5 पद में लिखा है, सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। प्रभु यीशु को विश्वास योग्य और सच्चा गवाह कहा गया है। हमें भी ऐसे ही गवाह होना है। आज प्रभु के गवाह होने के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। मसीह यीशु के गवाह बनने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ सीखें जिससे आप घर घर जाकर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बारे में चर्चा करने के योग्य हो जाएं। परंतु स्मरण रखें कि गवाही दो प्रकार की है, विश्वास योग्य और झूठी। आप कहें कि प्रभु यीशु उद्धार दिलाता है, रक्षा करता है और संतोष प्रदान करता है, तो यह अच्छी और सच्ची गवाही है। परंतु क्या आपने अपने जीवन से इसे सिद्ध किया है, या आप झूठ कह रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। परमेश्वर के वचन में इजेबेल का उदाहरण है। वह पाप के अंगीकार को ठट्ठा जानती थी। हमें कहा गया है कि ऐसे लोगों से दूर भाग जाएं और उनके साथ संबंध न रखें। नीति वचन 14 उसके 10 पद में लिखा है, मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। हर एक के मन में कोई न कोई आनंद और दुख छिपा रहता है जिसे उनके साथ कोई नहीं बांट सकता। हम बांटना भी चाहें तो वे समझ नहीं पाते हैं। मुझे स्मरण है कि कुछ लोगों ने मेरे बीमारी की अवस्था में मेरे बारे में जानना चाहा। मैंने उन्हें बताया कि अस्पताल में मैं परमेश्वर के पास गया हूं और उसने कैसे मुझ पर अपने को सत्य सिद्ध किया। उन्हें मेरी यह बात अच्छी नहीं लगी। मुझे बोध हुआ कि वे मुझे झिड़क कर चले गए। मैंने सोचा शायद यह भेद मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता हूं। मेरे प्रियो, क्या आपके पास कोई अद्भुत आनंद का अनुभव है जिसे आप अपने प्रिय जनों को सुनाना चाहते हैं? मैं जब बाइबल अध्ययन के लिए कॉलेज में था उस समय मैं बहुत निराश था और मैंने एक छोटी सी कविता लिखी जिसे मैं अपने मित्रों को सुनाना चाहता था, और तब मैंने उस कविता को पढ़ करके सुनाया, लेकिन वे इसे पसंद नहीं किए। इस कविता को पढ़ करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, परंतु उसे सुनकर वे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने मेरे पढ़ने को अनदेखा कर दिया, और सच तो यह है कि मैंने उस दिन से कविता नहीं लिखी। यदि मैं एक उभरता हुआ कवि था तो मैं संसार के लिए समाप्त हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी कविता पर उसी समय विराम लगा दिया था। कुछ बातें तो हम सबके साथ बांट सकते हैं, परंतु कुछ बातें हम किसी के साथ नहीं बांट सकते। नीति वचन 14:12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जी हाँ, यह पद पंथियों के लिए प्रासंगिक है। वे बड़े तर्कपूर्ण, लुभावने और आकर्षक प्रतीत होते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, ऐसा क्यों है कि यह पंथ बड़ा फूलता फलता है? मैंने उसे उत्तर दिया, क्योंकि यह पुराने मनुष्यत्व को आकर्षित करता है, यह देह को आकर्षित करता है। इसमें कहा जाता है कि आप एक मनभावन मनुष्य बने और कुछ नियमों का पालन करें तो आप सफल होंगे। मेरे मित्रों, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु आगे क्या होता है? परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, अर्थात परमेश्वर से अनंत अलगाव। सही मार्ग पर रहना कैसा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में प्रवेश करें तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने अपने प्राण आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि मेरा पाप उस लहू से धुल जाए। उसने मेरी और आपकी सजा को अपने ऊपर में ले ली। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसने आपके पापों की सजा को उठाया हो या भोगा हो। जी हाँ, इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। नीति वचन की पुस्तक 14:15-18 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। संसार सोचता है कि मसीह विश्वासियों में बुद्धि की कमी है और वे जो भी उन्हें समझा दिया जाए उसे मान लेते हैं। परमेश्वर की सच्ची संतान और इस परिप्रेक्ष्य में निर्बुद्धि नहीं है। वह सब कुछ ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं करती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया, कि शिष्य प्रभु यीशु से सदैव प्रश्न पूछते रहते थे। थोमा सदैव ही प्रश्न करता था। शमौन पत्रस भी अनेक प्रश्न पूछता था, प्रभु तू कहाँ जाता है, मैं तेरे साथ क्यों नहीं आ सकता। शांत स्वभाव फिलिपुस ने भी पूछा था, हमें पिता को दिखा दे। यहूदा जो स्क्रूति नहीं है ने पूछा, यह कैसे हो कि तू हमें यह बातें बताए परंतु संसार को नहीं। वे सदैव प्रश्न पूछते रहते थे। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर की संतान हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी के द्वारा छले जाएंगे, आप किसी की भी बात नहीं मान लेंगे। विश्वास का अर्थ अंधकार में छलांग लगाना नहीं है, विश्वास का अर्थ जान की बाजी लगाना नहीं है, और न ही उस छोटी बालिका की परिभाषा है जो कहती है जो नहीं है उस पर विश्वास करना। मेरे मित्रों, विश्वास ठोस नींव पर आधारित है। परमेश्वर कहता है, जिस बात का ठोस आधार ना हो उस पर विश्वास मत करो। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य हर एक बात को परखता है। परमेश्वर का भय बुद्धिमान मनुष्य को हर एक सुनी बात को परखने की प्रेरणा देता है। वह प्रचार की या प्रसार की किसी बात को इसलिए नहीं मान लेता है कि प्रचारक ने कहा है, वह परख कर देखेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं भी आपसे कहता हूं कि मेरे बात को ज्यों का त्यों स्वीकार ना करें। मेरी बातें सिंहासन का आदेश नहीं है, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं। आप मेरी बातों को परमेश्वर के वचन से परखें। जी हां, आज कलिसियाओं और रेडियो टीवी पर अनेक मधुर वचन सुनाए जा रहे हैं। ओह मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन से परखें, बिना किसी भी सुनी हुई बात पर विश्वास ना करें। वचन को परख करके ही आप उसे ग्रहण करें। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय के 20 पद में लिखा है, निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। यह वचन तो अधिकाधिक सत्य सिद्ध होता जा रहा है। गरीब का कोई स्थान नहीं है, धनवान के अनेक मित्र होते हैं। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो आपकी सहायता न करे या न कर पाए उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप उनकी सहायता करते हैं? आगे लिखा है नीति वचन 14 उसके 23 पद में, परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। जी हाँ, मनुष्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, काम करने वाले और बातें करने वाले। आप किस समुदाय से आते हैं? नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 24 में आगे लिखा है, बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है परंतु मूर्खों की मूर्ता नीरी मूर्ता है। यहाँ धन का अर्थ पैसों से नहीं है। बहुत से लोग आत्मिक रूप से धनवान होते हैं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नीति वचन 14 उसके 25 में पढ़ते हैं, सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 14 पद में प्रभु यीशु ने इसी बात को इस प्रकार से कहा, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह बिल्कुल सत्य बात है। नीति वचन 14 उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। परमेश्वर का भय मानने की शिक्षा देना संपूर्ण नीति वचन में पवित्र आत्मा का उद्देश्य है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तब निश्चय ही हमारे जीवन आशीषमय होते हैं। नीति वचन 14 उसके 30 पद में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ईर्ष्या आपको आपके आनंद और परमेश्वर की सहभागिता से वंचित नहीं करेगी परंतु आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। यही कारण है कि आज ईर्ष्या लोगों के रात की नींद चुरा ली है। वे रात में सो नहीं पाते, दिन में जाग नहीं पाते और परेशान रहते हैं। नीति वचन 14:34 में लिखा है, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जी हाँ, काश यह पद हमारे देश का नारा होता, न कि तलवार को हल बनाना। जो प्रभु के आगमन तक नहीं होगा, प्रभु के राज्य में ही वे जानेंगे कि धार्मिकता राष्ट्र में सर्वोपरि है। आज राष्ट्र नहीं समझते कि धार्मिकता सर्वोपरि है, परंतु इतिहास इसका गवाह है। इतिहास का मार्ग उन राष्ट्रों के मलबे से भरा है जिन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना, पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। हम नीति वचन 14:35 पद में पढ़ते हैं, जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। मेरे मित्रों, यह निश्चय है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में यदि कर्मचारी बुद्धि से काम करे तो देश की उन्नति होती है, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते हैं और यही कारण है कि हम डूबते चले जा रहे हैं। न केवल हमारे राष्ट्र के लिए, यह हमारे घर और परिवार के लिए भी लागू होता है। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन में आपने अवश्य ही गुण बातों को सीखा है। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें और आपकी अगुवाई करें ताकि हम फिर से आने वाले समय में परमेश्वर के वचन को अधिक सीखने पाएं। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हर राह रहबर तू बना मुझे प्यार।